17 जनवरी दिन भर दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदल। नेतन्याहू और मोदी का अहमदाबाद में रोड शो, दोनों ने किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन।
द वर्ल्ड नोज अबाउट आईपॉड, दे नो अबाउट आईपैड, वेल देयर इज वन मोर आई दैट द वर्ल्ड नीड्स टू नो अबाउट, आई क्रिएट।
दुनिया जहान में आज चर्चा अमेरिका में बढ़ते नस्लवाद की।
कोर्ट केसेस में भी साफ जाहिर होता है कि जब छोटे बच्चे यानी 12-13 साल का कोई अगर काला बच्चा क्राइम करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है, लेकिन अगर व्हाइट कोई बड़ा क्राइम करता है तो पहले दूसरे बार तो उनको माफी दे दी जाती है।
जिक्र होगा सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के हाथों भारत की करारी हार का भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ गुजरात के धुरेरा गांव में आई क्रिएट सेंटर का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने नेतन्याहू के साथ एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो किया। बाद में साबरमती आश्रम में नेतन्याहू ने पत्नी के साथ चरखा चलाया और प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी की तस्वीर पर माला चढ़ाई। उत्तर और दक्षिण कोरिया ने अगले हफ्ते होने वाले शीत ओलंपिक के लिए संयुक्त महिला आइस हॉकी टीम बनाने पर सहमति बना ली है। अधिकारी इस बात को लेकर तैयार हो गए हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया खेलों के उद्घाटन समारोह में एकीकरण समर्थक झंडे के साथ एक साथ प्रवेश करेंगे। बार्सिलोना में कैटलोनिया की संसद में वामपंथी अलगाववादी नेता रोजर टोरेंट को स्पीकर चुना गया है। पिछले साल अक्टूबर में स्पेन से अलग होने के एकतरफा ऐलान के बाद कैटलोनिया की संसद को स्पेन ने भंग कर दिया था। दिसंबर में यहां पर चुनाव हुए जिसमें आज़ादी समर्थक दलों का प्रभुत्व बना रहा है। जो सदस्य जेल में हैं या फिर देश के बाहर चले गए हैं, उनकी खाली सीटों पर आज पीले रंग के रिबन लगाए गए थे। स्टैंड इन स्पीकर अर्नेस्ट मारागाल ने कहा कि हम हिरासत में लिए गए सदस्यों को रिहा करवाने के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करवाने और ब्रसल्स में रह रहे नेताओं को वापस लाने के लिए हम प्रतिरोध जारी रखेंगे। हमारा देश हमेशा हमारा रहेगा। धन्यवाद। कैटलोनिया जिंदाबाद। ये थे कैटलोनिया की संसद के स्टैंड इन स्पीकर के शब्द। इसराइल में एक अदालत ने आदेश दिया है कि इसराइली सैनिकों को थप्पड़ मारने वाली फिलिस्तीनी किशोरी को मुकदमा खत्म होने तक हिरासत में रहना होगा। 16 साल की अहे तमीमी का वीडियो पूरी दुनिया में चर्चित हो गया था। बांग्लादेश में प्रशासन का कहना है कि उन्होंने म्यांमार के साथ लगती सीमा के पास कैंपों में रह रहे 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या की गिनती की है। इसमें वो रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हैं जो पिछले 2 दशकों में यहां आए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 6.5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों ने पिछले साल अगस्त से लेकर अब तक पलायन किया है। चीन ने कहा है कि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों पर कनाडा में हाल ही में संपन्न हुई बैठक की कोई वैधता नहीं है। चीन का कहना है कि ऐसे इस मसले का हल नहीं निकलेगा। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कैंग ने कहा,
This was effectively a gag order by the White House.
अमेरिका और कनाडा इस कॉन्फ्रेंस के प्रायोजक थे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के आदेश पर हिस्सा लेने वाले देशों के नाम पर इस बैठक का आयोजन किया। ये शीत युद्ध जैसी मानसिकता को दर्शाता है। इससे तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विभाजन बढ़ेगा और कोरियाई प्रायद्वीप में संकट को सुलझाने के संयुक्त प्रयासों को झटका लगेगा। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कैंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इथियोपिया में प्रमुख विपक्षी नेता मुरेरा गुडीना 1 साल जेल में रहने के बाद रिहा हो गए हैं। ओकोमा फेडरलिस्ट कांग्रेस के नेता ओरोमो दिसंबर 2016 में हिरासत में लिए गए थे। उनके ऊपर चरमपंथी संगठनों से संबंध रखने जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे। उत्तरी सीरिया की मुख्य कुर्द पार्टी पीवाईडी ने दुनिया से अफरीन इलाके में लोगों को बचाने की अपील की है, जिसके ऊपर तुर्की के हमले का खतरा मंडरा रहा है। तुर्की ने चेताया है कि कुर्द बलों के खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। पीवाईडी ने संयुक्त राष्ट्र से अफरीन और उत्तरी सीरिया को सेफ जोन घोषित करने की अपील की है। रूस ने कहा है कि अफगानिस्तान में चल रहे गृहयुद्ध को खत्म करने के लिए अफगान सरकार और तालिबान के बीच तुरंत बातचीत होनी चाहिए। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि रूस दोनों पक्षों को बातचीत के लिए मंच मुहैया करवाने के लिए तैयार है। कुछ अमरीकी अधिकारियों ने रूस पर तालिबान को हथियार देने का आरोप लगाया था, लेकिन रूस ने इन आरोपों को गलत बताया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। इसराइल के प्रधानमंत्री पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद में आज रोड शो किया। इसके बाद दोनों ने साबरमती आश्रम में चरखा चलाया और फिर पतंगबाजी भी की। इसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री धोलेरा गांव के आई क्रिएट सेंटर पहुंचे और दोनों ने संयुक्त रूप से सेंटर का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट के साथ सरोज सिंह।
भारत के दौरे के तीसरे दिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू आज गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पहुंचे। वहां उन्होंने 7 घंटे गुजारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनका स्वागत एयरपोर्ट पर किया। वहां से दोनों सीधे रोड शो के जरिए साबरमती आश्रम पहुंचे। रोड शो 8 किलोमीटर लंबा था। साबरमती आश्रम में बेन्यामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी दोनों ने चरखा चलाया। पूरे वक्त प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ उन्हें चरखा और साबरमती आश्रम का महत्व समझाते हुए वीडियो में नजर आए। इसके बाद दोनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। यहां नेतन्याहू ने पीएम मोदी के साथ पतंग उड़ाने का आनंद उठाया। इसके बाद तीनों साबरमती रिवर फ्रंट देखने पहुंचे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने इस रिवर फ्रंट का कायाकल्प किया था। इसलिए जो कोई साबरमती आश्रम देखने आता है, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें साबरमती रिवर फ्रंट दिखाने जरूर ले जाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और बेन्यामिन नेतन्याहू ने आई क्रिएट सेंटर के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि मैं हमेशा चाहता था कि आई क्रिएट का इसराइल से गहरा संबंध हो। आज भारत आकर उन्होंने इस रिश्ते को और गहरा किया है।
मैं श्री नेतन्याहू का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने गुजरात आने का निमंत्रण स्वीकार किया और परिवार के साथ आए। इस कार्यक्रम से यहाँ आने से पहले हम साबरमती आश्रम गए थे, जहाँ पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला, पतंग चगाने का भी अवसर मिला।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी यहाँ जनता को संबोधित किया।
The world knows about iPod, they know about iPad. Well, there's one more I that the world needs to know about. I create. Prime Minister Modi founded I create.
दुनिया iPod जानती है, iPad जानती है, पर एक और आई है जिसके बारे में दुनिया को जानना है, वो है आई क्रिएट। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी स्थापना की जब वो गुजरात के प्रधानमंत्री थे। ये थे बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। आई क्रिएट सेंटर नव उद्यमियों को प्रोत्साहन देता है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। इस यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी को गुजरात की मेहमान नवाजी से रूबरू कराना है। ये बात उन्होंने खुद ट्वीट कर बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से मंशा गुजरात को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की रही है। बेन्यामिन नेतन्याहू तीसरे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनको नरेंद्र मोदी गुजरात दिखाने ले गए। इसके पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नरेंद्र मोदी गुजरात की मेहमान नवाजी दिखा चुके हैं। इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब हाल में भारत से इसराइल को झटके मिले हैं, जिनसे रिश्तों में उत्साह कम हुआ है। इसराइल को भारत ने पहला झटका उस समय दिया जब इसने संयुक्त राष्ट्र में यरूशलेम को लेकर फिलिस्तीनियों के पक्ष में वोट दिया। दूसरा झटका उस समय लगा जब भारत ने अचानक $0.5 अरब का इसराइल से करार रद्द कर दिया। ये करार रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। इसके बावजूद नेतन्याहू भारत आए। ये इस बात को दिखाता है कि दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने और गहरे हैं। सरोज सिंह, BBC।
आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी बहस के बीच पिछले पखवाड़े छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड की ये अनिवार्यता राज्य भर में लागू कर दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से जमानत लेने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और जमानत के बाद भी लोगों को जेल में रहना पड़ रहा है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में रहने वाले एक आदिवासी युवक को पुलिस ने खुद ही जमानत देने के बाद भी केवल इसलिए जेल भेज दिया क्योंकि उसके आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हो पाया था। कानूनन उसे थाने से ही छोड़ दिया जाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा जमानत के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने के आदेश के कारण उसे जेल की हवा खानी पड़ी। असल में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत के एक मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है, जिसमें अब सभी मामलों में जेल में बंद आरोपी और जमानतदार का आधार कार्ड जमानत के समय लिया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर उसका सत्यापन भी किया जाएगा और उसके बाद ही जमानत पर अभियुक्त की रिहाई हो सकेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अधिवक्ता सतीश वर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट का ताजा फैसला विधि सम्मत नहीं है।
इस आदेश के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि 7 दिवस के भीतर जिन व्यक्तियों को जमानत दी जा रही है उनके आधार कार्ड अनिवार्य रूप से सत्यापन करा लिए जावे। परिणाम यह हो रहा है कि 7 दिनों के उपरांत ही अभियुक्त को आदेश मिल जाने के बाद भी जमानत पे नहीं छोड़ा जा रहा है। 7 दिन का जो अतिरिक्त समय अभियुक्त को छूटने में लग रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा।
आदिवासी और गरीब लोगों से जुड़े मुद्दों पर पैरवी करने वाली अधिवक्ता रजनी सोरेन का कहना है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के कारण जमानत मिलने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग जेलों में ही बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं आरोपी के पास आधार कार्ड नहीं है तो कहीं जमानतदार के पास। अगर दोनों के पास आधार कार्ड है तो भी उसका सत्यापन कई स्तरों पर जांच के बाद ही हो सकता है। रजनी सोरेन कहती हैं,
पहले क्या होता था कि आपको जैसे बेल मिला ना तो आप उसी दिन जाएंगे और जो पट्टा है उसका कॉपी वगैरह देंगे और फिर उसी दिन हो जाता था। तो अब क्या हो रहा है, किसी को बेल मिल जा रही है सर तो 10 दिन का वो डेट मिल रहा है उसको वेरीफाई करने का, मतलब जो श्योरिटी है उसका वेरिफिकेशन के लिए 10 दिन का डेट और बढ़ जा रहा है।
रजनी सोरेन का कहना है कि जमानत के लिए पुलिस और राजस्व विभाग से आधार कार्ड के सत्यापन से भ्रष्टाचार और बढ़ेगा।
जो बेल का जो प्रोविजन है जो सीआरपीसी में है, 1 हफ्ते तक कोई अगर श्योरिटी नहीं ला सकता है तो उसको फिर आपने खुद के बॉन्ड से छोड़ने का उसने प्रावधान दिया हुआ है। पूरा तहसीलदार के पास ही पावर चला गया है वो भी वेरिफिकेशन का, तो करप्शन का फिर और एक मतलब एक सोर्स हो गया है।
देश भर की अलग अलग योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ अभियान चलाने वाली अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस आदेश से चकित हैं।
एक ही उसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो पूरी हमारी प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं कि कौन किसकी जमानत दे रहा है, कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, क्या पीता है, क्या काम करता है, किससे मिलता है, ये सब जानने की एक प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रही है। आपके जिंदगी का हर एक पहलू एक जगह लिंक करने की कोशिश है।
छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर कहा है कि हाईकोर्ट का निर्देश व्यावहारिक तथा विधि सम्मत नहीं है। इस बीच एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है, लेकिन जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं होती तब तक तो छत्तीसगढ़ में आधार कार्ड जमानत लेने वालों के लिए मुश्किल का सबब ही बना रहेगा। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भारी मात्रा में अवैध घोषित हो चुके 1,000 और 500 रुपए के नोट मिले हैं। करीब 100 करोड़ की कीमत के बताए जा रहे ये नोट एक बिल्डर के यहां से बरामद किए गए हैं और इन नोटों को बिस्तर की तरह सजा कर रखा गया था। मामले में पुलिस अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई और लोगों के शामिल होने की आशंका है। पूरी जानकारी के साथ लखनऊ से समीर आठवत मिश्र।
500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट करीब 1.25 साल पहले ही अवैध यानी रद्दी घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन कानपुर में जिस तरह से इनकी बरामदगी हुई है और जिस तरह से सहेज कर ये रखे गए थे उससे ऐसा नहीं लगता कि ये रद्दी नोट हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA और उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ सूचनाओं के आधार पर मंगलवार देर शाम छापेमारी कर एक बंद पड़े घर से नोटों को ढूंढ निकाला। घंटों मशीनों के जरिए और हाथ से गिनने के बाद पता चला कि इनकी कीमत 96 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा है। कानपुर के SSP अभिषेक मीणा ने मीडिया को ये जानकारी दी।
सूचना प्राप्त हुई थी कि कहीं स्वरूप नगर में एक अशोक खत्री है, उनके आवास पर और उनके कुछ और जो लोग हैं उनके माध्यम से जो पुराना प्रचलन से बाहर जो करेंसी हो चुकी है लोगों को उसमें पैसा ये बदलवाने का काम करते हैं। इस पर उनके रेड की गई, रेड में कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं अभी और उनके घर पर सर्च की कार्रवाई चल रही है। इसमें इनकम टैक्स को भी सूचना दे दी गई है और RBI को भी बता दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक जिस घर से ये नोट मिले हैं वो कानपुर के एक नामी बिल्डर आनंद खत्री का है। नोट 2 से 3 कमरों में बिस्तर की तरह सहेज कर रखे गए थे। पुलिस ने अब तक इस मामले में जिन 16 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें आनंद खत्री भी शामिल हैं। पुलिस को आशंका है कि इसके तार हैदराबाद, केरल, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से जुड़े हो सकते हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने बताया था कि पुलिस ने मंगलवार दोपहर सटीक सूचना के आधार पर 2 होटलों और शहर के बड़े बिल्डर के दफ्तर और घर पर छापेमारी की। इसमें पुलिस के अलावा आयकर विभाग की भी टीमें लगी थीं। देर रात तक चली कार्रवाई में पुराने नोटों की इतनी बड़ी बरामदगी हुई है। नोट सूटकेस और बोरों में भी भरकर रखे गए थे। बताया जा रहा है कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। लगातार विवादों में रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब नस्ल भेदी टिप्पणी करने का आरोप लगा है। पिछले हफ्ते अमेरिका में रह रहे प्रवासियों पर हो रही एक बैठक के दौरान अफ्रीकी देशों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित तौर पर शिट होल शब्द इस्तेमाल किया था। इस शब्द का मतलब गंदी और बदबूदार जगह से है। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की थी। ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप इस तरह के बयान को लेकर घिरे हों। तो क्या उनके बयानों की वजह से अमेरिका में एक बार फिर नस्लवादी भावनाएं उभर रही हैं? इस बार दुनिया जहां में इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं आदर्श राठौर।
दुनिया जहां।
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का वो ऐतिहासिक भाषण है जो उन्होंने 28 अगस्त 1963 को अफ्रीकी अमरीकियों के नागरिक अधिकारों के लिए चलाए गए आंदोलन के दौरान वॉशिंगटन में दिया था। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि वो ऐसे अमेरिका का सपना देखते हैं जिसमें नस्ल भेद के लिए कोई जगह न हो। अफ्रीकी अमरीकियों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए अहिंसक आंदोलन चलाने वाली इस शख्सियत के जन्मदिन पर अमेरिका में हर साल 15 जनवरी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे मनाया जाता है। मगर इस साल इस अहम दिन से कुछ ही दिन पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नस्ल भेदी टिप्पणियां करने के आरोप में घिर गए। उन्हें सफाई देकर कहना पड़ा कि मैं नस्ल भेदी नहीं हूं, मगर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरी दुनिया में चर्चा है कि जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका में नस्ल भेदी भावनाओं में उबाल देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच दरार क्या वाकई बढ़ रही है? अमेरिका के जमीनी हालात के बारे में डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं,
पुलिस की जो फायरिंग में सबसे ज्यादा परसेंटेज अफ्रीकन अमेरिकन मरते हैं, और कोर्ट केसेस में भी साफ जाहिर होता है कि जब छोटे बच्चे यानी 12-13 साल का कोई अगर काला बच्चा क्राइम करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है, लेकिन अगर वाइट कोई बड़ा क्राइम करता है तो पहले दूसरे बार तो उनको माफी दे दी जाए। तो इस तरह से अमेरिका में कल्चरली, इकोनॉमिकली और स्ट्रक्चरली रेसिज्म है। जो एशियंस आए हुए हैं जैसा चाइना से, इंडिया से, दूसरे मुल्कों से, उनके खिलाफ उतना ज्यादा रेसिज्म नहीं है। तो इस तरह से अमेरिका में जब कोई कौम इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हो जाती है तो वो वाइट बन जाती है।
अमेरिका में नस्लवाद की शुरुआत होती है औपनिवेशिक दौर से, फिर लगातार संविधान में संशोधन हुए और धीरे धीरे अफ्रीकी अमरीकियों को उनके अधिकार दिए गए, मगर संविधान के प्रावधानों की लगातार अनदेखी होती रही। मगर इसके साथ ही अफ्रीकी अमरीकियों का संघर्ष भी जारी रहा। ১৯৫৪ में नागरिक अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन तेज हुआ। भेदभाव के खिलाफ समाज के कई हिस्सों के लोग आगे आए। अमेरिका के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले कैसियस क्ले धर्म और नाम बदलकर मोहम्मद अली हो गए। ये आंदोलन सिविल राइट्स एक्ट 1968 बनने तक जारी रहा, जिसमें नस्ल, रंग, धर्म, लिंग और मूल राष्ट्र के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी करार दे दिया गया। इसके 40 साल बाद 2008 में जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने, तब उम्मीद की जाने लगी थी कि अब नस्लवाद शायद खत्म हो जाएगा। मगर क्या ऐसा हो पाया? वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा कहते हैं,
ओबामा राष्ट्रपति हुए उस समय भी लगा था कि कम से कम ब्लैक्स के साथ कुछ न्याय हो सकेगा, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप के आने के बाद तो हालात और भी खराब हो गए।
प्रोफेसर मुक्तदर खान मानते हैं कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उससे अमेरिका में गोरे लोगों का वर्चस्व चाहने वालों को ये डर सताने लगा था कि अमेरिका अब उनके हाथ से निकल जाएगा।
ओबामा के वक्त द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी अमेरिका के ब्लैक थे, फिर कोलिन पावल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए, वो भी ब्लैक थे, कॉन्डोलिज़ा राइस ब्लैक थे। तो उससे क्या हो गया है, इन अमेरिका में जो कम पढ़े लिखे अफ्रीका वाइट लोग है वो बाकायदा डर गए हैं कि उनके हाथ से मुल्क निकल जा रहा है, वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है।
वॉइस ऑफ अमेरिका को पुलिस से मिले आंकड़े कहते हैं कि 2017 में लगातार तीसरे साल अमेरिका के बड़े शहरों में यहूदियों, मुसलमानों, काले लोगों और एलजीबीटी समुदाय के लोगों पर हमले बढ़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान की वजह से नस्लभेदी भावनाएं बढ़ी या फिर इन भावनाओं के बढ़ने के कारण ही ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत हुई है। प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है।
उनकी कैंपेन के दौरान उन्होंने शुरू ही में जो उनकी जो पहली बड़ी तकरीर हुई थी, मिलियन हिस्पैनिक्स हैं यानी जो स्पैनिश जबान बोलते हैं, तो उन सबको उन्होंने रेसिस्ट, क्रिमिनल और रेपिस्ट करार दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों को सबको अमरीका से बैन कर दिया जाए। प्रेसिडेंट बनने के बावजूद भी पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ जब अफ्रीकन अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर्स प्रोटेस्ट करने लगे तो फिर उन्होंने उनको बाकायदा बहुत ही गंदी सी गाली का इस्तेमाल किया। उनके इलेक्शन के बाद जो पहला हेट क्राइम हुआ यानी वाइट सुप्रीमेसिस्ट ने जो पहला क्राइम किया वो एक इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट को मारा, और उसके 6 हफ्ते तक बार बार इंडियन लॉबी और दूसरे मीडिया वगैरह बोलने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट रेसिस को कंडेम नहीं किया।
फिर सवाल ये भी उठता है कि नफरत भरे अपराधों और हरकतों पर ट्रंप का खामोश रहना कहीं नस्लवादी विचारधारा रखने वालों को उकसा तो नहीं रहा? इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा कहते हैं,
अपने देश को ही देख लीजिए, भारत को। यहाँ भी संविधान में सबको बराबरी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये रेसिज्म, भेदभाव, जातिवाद, रंग भेद, नस्लवाद, ये सब इतने डीप रूटेड हैं, हमारी साइकी में, ये डीएनए में चले गए हैं, और बड़ी कोशिश करके इनको दूर करने की जरूरत होती है। और जैसे ही उसके लिए जलवायु बढ़िया मिलती है, यानी सत्ता जो है जब उसके लिए आबोहवा मुहैया कराती है, तो वो चीजें फिर उभर आती हैं। वही स्थिति आज अमेरिका में भी हो रही है।
लेकिन अमेरिका में ऐसा कैसे हो रहा है? प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका संबंध व्हाइट नेशनलिज्म से है।
एक बात तो साफ जाहिर है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में स्टीवन मिलर जो अभी भी हैं और स्टीव बैनन जो अभी तक थे, ये तो इनका ताल्लुक तो व्हाइट नेशनलिज्म से बहुत क्लियर है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका में जो रेशियल कॉम्पोजिशन कही है वो इतनी तेजी से बदल रहा है कि बाद लोगों का ख्याल है कि 2050 तक जो वाइट कम्युनिटी है वो बिल्कुल माइनॉरिटी में आ जाएंगी। अब वो सिर्फ 60% वाइट है अमेरिका, तो इससे जो वाइट कम्युनिटी है बाज लोग डर रहे हैं कि उनका जो प्रिविलेज है, उनकी जो पावर है, इकोनॉमिक स्टेटस है, वो खत्म हो जाएगा।
ऐसे में भविष्य क्या है? कहीं अमेरिका में नस्लभेदी विचारधारा बढ़ेगी तो नहीं? प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं,
देखिए, अमेरिका आइंदा 10-15 साल में इज गोइंग टू फेस एन आइडेंटिटी क्राइसिस कि ये मुल्क टोटली द फर्स्ट जेन्युइन मल्टी कल्चरल नेशनल स्टेट बन जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जो सबसे एलीट होम होगी इस मुल्क की वो वाइट नहीं होगी। लेकिन ये अमेरिका एज ए कंट्री के लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो इनोवेशन, इकोनॉमिक क्रिएटिविटी वगैरह जो इमिग्रेंट्स लेकर आ रहे हैं, उसके वजह से अमेरिका विल कंटिन्यू टू रिमेन मतलब बहुत ही वाइब्रेंट इकोनॉमी। अब ये देखना है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी किस हद तक ये चैलेंज को बर्दाश्त कर सकती है।
अमेरिका में अगर लंबे समय से नस्लभेद रहा है तो इसके खिलाफ लड़ाई का भी लंबा इतिहास है। वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा कहते हैं
कि रेसिज्म के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी उसकी वजह से एक मानसिकता तो बनी है लोगों के अंदर रेसिज्म के खिलाफ। यही वजह है कि इनको ट्रंप को बैकफुट पर जाना पड़ा है कुछ हद तक। जिन लोगों के अंदर रेसिज्म है वो भी ये नहीं कहना चाहेंगे कि हम रेसिस्ट हैं। तो यह उस लड़ाई का ही नतीजा है जिस लड़ाई का अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं।
नस्लवाद यानी अपनी नस्ल या जाति को दूसरी से बेहतर समझना, यही सोच पूर्वग्रहों और भेदभाव को जन्म देती है। इंसान इंसान के बीच फर्क पैदा करने वाली इस सोच के आरोप आज अमरीकी राष्ट्रपति पर लग रहे हैं, मगर असल में ये सोच पूरी दुनिया में अलग अलग रूपों में मौजूद है और इसे खत्म करने के लिए अभी बहुत प्रयास करने होंगे।
सेंचुरियन टेस्ट में भारत को 135 रनों से हराकर टेस्ट श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है दक्षिण अफ्रीका ने। दूसरी पारी में जीत के लिए 287 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 151 रनों पर ऑल आउट हो गई। पूरा विवरण दे रही हैं सूर्यांशी पांडे।
दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच सेंचुरियन में हुए दूसरे टेस्ट मुकाबले में शुरू में जो मुकाबला बराबरी का लग रहा था वो खत्म होते होते एक तरफा हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने ना सिर्फ दूसरे टेस्ट मैच का टॉस जीता बल्कि ये पूरा मुकाबला 135 रनों से भारत से जीता है और इस जीत में सबसे बड़ा योगदान था दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी नगीडी का, जिन्होंने भारत की शुरू हुई दूसरी पारी में 6 विकेट लिए, जिसमें सबसे अहम विकेट था विराट कोहली का जो केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। भारत दूसरी पारी में सिर्फ 151 रन बना पाई। कुल मिलाकर 3 टेस्ट मैच में से दक्षिण अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैच अपने नाम कर लिए हैं। ऐसे में जोहानिसबर्ग में खेले जाने वाला 3रा टेस्ट मैच क्या सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और क्रिकेट विशेषज्ञ आकाश चोपड़ा।
देखिए, वैसे औपचारिकता तो नहीं है 3रा टेस्ट मैच भी, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भारतीय टीम साउथ अफ्रीका गई हो और 3 में से 3 टेस्ट मैचेस हार गई हो। और दूसरी चीज, आजकल बहुत मुश्किल हो गई है विराट कोहली के मन को पढ़ना, क्योंकि आपको जो लगता है 11 होनी चाहिए वो 11 वो कभी होती नहीं है। जोहानिसबर्ग वो वॉन्डरर्स में जब मुकाबला होगा तो किस तरह की पिच होगी, अगर जो खबरें आ रही हैं कि जरूर उस पे घास होगी, जरूर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद होगी, अगर वैसी पिच रहती है तो फिर मैं उम्मीद करूंगा कि बल्लेबाजी में ज्यादा बदलाव ना हो लेकिन रहाणे वापस आ जाएं। ये मेरी विश लिस्ट है कि आप 6 बल्लेबाजों के साथ उतरिए, आप हार्दिक पांड्या को बाहर बिठा सकते हैं।
इस मुकाबले में सबसे निराशाजनक प्रदर्शन रहा भारत के ओपनिंग बैट्समैन का। मुरली विजय ने दूसरी पारी में केवल 9 रन बनाए तो केएल राहुल ने 4 रन। वहीं पहली पारी में मुरली विजय 46 रन बनाने में कामयाब रहे लेकिन केएल राहुल सिर्फ 10 रन बना पाए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3रा टेस्ट मुकाबला 24 जनवरी से खेला जाना है। और अब आपको लेकर चलते हैं फुटबॉल के मैदान पर, जहां ब्राजील के मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डिनो ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। रोनाल्डिनो साल 2002 में वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्राजील टीम के न केवल सदस्य थे बल्कि टीम को चैंपियन बनाने में उनका अहम योगदान था। रोनाल्डिनो ने पोर्टो एलेग्रे में अपने करियर का आगाज ग्रेमियो के साथ किया लेकिन फ्रांस के पीएसजी के साथ खेलते हुए उन्हें ख्याति मिली। इसके बाद 2003 से 2008 के बीच वो बार्सिलोना के लिए खेले। रोनाल्डिनो ब्राजील टीम में मिडफील्डर और फॉरवर्ड की हैसियत से खेले। उन्हें फ्री किक लेने में महारत हासिल थी। उन्हें 2005 में फीफा का साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया था। और जाते जाते आपको टेनिस के मैदान पर चल रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरफ लेकर जाते हैं। आज ऑस्ट्रेलियन ओपन का 3रा दिन था और राफेल नडाल ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी लोनाडो मेयर को हराकर 3रे राउंड में अपनी जगह बना ली है। और इसी बीच 1975 के बाद सबसे युवा खिलाड़ी जिसने किसी भी ग्रैंड स्लैम के 3रे चरण में प्रवेश किया हो वो बनी यूक्रेन की टेनिस प्लेयर मार्ता कोस्त्युक। केवल 15 साल की मार्ता कोस्त्युक ने ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर ओलिविया को 6-3, 7-5 से हराकर ये इतिहास रचा।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ गुजरात के धुरेरा गांव में आई क्रिएट सेंटर का उद्घाटन किया। उत्तर और दक्षिण कोरिया ने अगले हफ्ते होने वाले शीत ओलंपिक के लिए संयुक्त महिला आइस हॉकी टीम बनाने पर सहमति बना ली है। बार्सिलोना में कैटलोनिया की संसद में वामपंथी अलगाववादी नेता रोजर टोरेंट को स्पीकर चुना गया है। पिछले साल अक्टूबर में स्पेन से अलग होने के एक तरफा ऐलान के बाद कैटलोनिया की संसद को स्पेन ने भंग कर दिया था। इसराइल में एक अदालत ने आदेश दिया है कि इसराइली सैनिकों को थप्पड़ मारने वाली फिलिस्तीनी किशोरी को मुकदमा खत्म होने तक हिरासत में रहना होगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे अजीत सारथी, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।